ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति को निषेधित करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। कर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने का अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल ने कर्मचारियों को किया निर्देश। इसी मार्ग से 16 गते होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए कल होगा उम्मीदवारी पंजीकरण। उपनिर्वाचन होने वाले जिलों में कल से आचार संहिता होगी लागू। और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति को निषेधित करने की बात पर जोर दिया। आज अक्षेश्वर महाविहार ललितपुर में बौद्ध विहार संघ के स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि देश में सभी को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी आस्था अनुसार धर्म मनाने का अधिकार है, लेकिन इसे राजनीति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मौके पर प्रधानमंत्री ने बुद्ध की शिक्षा और दर्शन के प्रचार और प्रवर्धन में योगदान देने वाले लोटस रिसर्च सेंटर और डुडुम बहादुर बजाचार्य को सम्मानित किया था। उपप्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कर लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने का कर्मचारियों को निर्देश किया। राष्ट्रीय कर दिवस 2081 के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आंतरिक राजस्व विभाग और माथहत के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्य संपादन कमजोर नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभाग और माथहत के कार्यालयों का कार्य संपादन सूचक संतोषजनक नहीं है। इस बात का जिक्र करते हुए कि अनिवार्य प्रकृति का दायित्व बढ़ता गया है, सार्वजनिक कर्ज का आकार बड़ा होता गया है और मूलधन व ब्याज चुकाने में बड़ी रकम खर्च हो रही है। अर्थमंत्री पौड़ेल ने कहा कि ऐसे में राजस्व का दायरा बढ़ाकर लक्ष्य अनुसार कर में सफलता हासिल करना बहुत ही जरूरी है। इसी मार्ग से 16 गते होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए कल उम्मीदवारी पंजीकरण होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संविधान संबंधित स्थानीय तहों में स्थापित किए गए निर्वाचन अधिकृत कार्यालय में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी दर्ज होगी। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। आयोग ने बताया है कि उपनिर्वाचन होने वाले जिलों में कल से निर्वाचन आचार संहिता भी लागू होगी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि संविधान निर्माण के समय माओवादी द्वारा भिन्न मत के रूप में दर्ज किए गए शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली और पहचान के मुद्दे के लिए नए आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज काठमांडू में माओवादी केंद्र कावरे काठमांडू संपर्क समन्वय समिति की चौथी सभा और प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि थारू जाति के राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज रूपंदेही के भैरहवा में थारू कल्याणकारी सभा के 23वें महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में अर्थमंत्री पौड़ेल ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के साथ हुई सहमति और थारू समुदाय की उन्नति के लिए नीति के माध्यम से अगुवाई करने के लिए वर्तमान सरकार तैयार है। आज ही भैरहवा में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अब पूरी तरह संचालित होगा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि कांग्रेस एमाले मिलकर बने वर्तमान सरकार ने जनता की आवश्यकता और चाह अनुरूप देश को समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। आज लमजुंग की सुंदर बजार नगरपालिका वार्ड नंबर 5 गहते में गहते कालिका मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने कहा कि विगत में बार बार सरकार के परिवर्तन से विकास नहीं हो पाने के कारण जनता में निराशा बढ़ा हुआ था और अभी के सरकार ने आशा जगाया है। मंत्री गुरुंग ने कहा कि अर्थतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं बेरोजगारी की समस्या को धीरे धीरे हटाने के हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G
सारी नै छिटो चल्छ नि। नेपाल टेलीकॉम
थियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसके महामन्त्री गगन थापाले सबै नेता तथा कार्यकर्ताओंको आपसी गुटबन्दीमा समय खर्च नगरके पार्टी सुदृढीकरणमा जुट्नेका आग्रह किया है। जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकके कार्यालय बीपी अध्ययन केन्द्र भवनके उद्घाटन तथा नेपाली कांग्रेसके संस्थापक नेता बीपी कोइराला और सिन्धुपाल्चोकके पूर्व सभापति द्वय स्वर्गीय रोहिणी राज सिग्देल और स्वर्गीय विकास लामा के सालिक अनावरण कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने कहा कि गुटबंदी का अंत नहीं हुआ तो यह तय है कि कांग्रेस का संकुचन होगा। महामंत्री थापा ने यह भी कहा कि राज्य को कृषि क्षेत्र में लगानी बढ़ाने के हिसाब से नीति आगे बढ़ाना चाहिए। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों में हुए बाल विवाह अंत करने के उद्देश्य से बाल विवाह अंत के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2081 लाने की तैयारी में है। बाल विवाह के कारण वैवाहिक जीवन दीर्घ नहीं होने, परिपक्व न होने के कारण संतान पाने पर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्या दिखना, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बाल श्रम लगायतों के समस्या रोकने के लिए भी रणनीति निर्माण के काम अंतिम चरण में है। ये जानकारी मंत्री नवल किशोर शाह सूढ़ी ने दी। गंडकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचन के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय झंडा उड़ाकर आज श्रद्धांजलि दी गई है। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे और प्रदेश सभा के उपसभामुख बीना कुमारी थापा ने पोखरा के नदीपुर स्थित प्रदेश सभा प्रांगण में गौचन की पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय झंडा उड़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण किया। इसी तरह नेपाली कांग्रेस गंडकी प्रदेश के सभापति शुक्रराज शर्मा ने पार्टी का झंडा उड़ाया। बता दें कि गौचन का बीते कार्तिक 28 गते काठमांडू में इलाज के दौरान निधन हुआ था। नेपाल को नाका के संबंध में पड़ोसी देशों से रहे असहमति को कूटनीतिक माध्यम से समाधान करने के लिए विज्ञों ने जोर दिया है। आज दंडपाणी अर्याल स्मृति केंद्र द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉ जयराज आचार्य, इतिहासकार प्राध्यापक दिनेश राज पंत और सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने संबंधित भारत से चीन के साथ नेपाल को किसी भी तरह के मतभेद है तो इसका समाधान वार्ता के माध्यम से ही करने का सुझाव दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू में आज आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। एसएसपी झांसी सुधा सिंह ने पत्रकारों को बताया कि घटना में घायल 16 नवजात का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के लिए कमिश्नर और डीआईजी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई है। अस्पताल में आग की घटनाओं ने हाल के समय में कई नवजात शिशुओं की जान ली है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति को निषेधित करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। कर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने का अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल ने कर्मचारियों को किया निर्देश। इसी मार्ग से 16 गते होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए कल होगी उम्मीदवारी पंजीकरण। उपनिर्वाचन होने वाले जिलों में कल से आचार संहिता होगी लागू और भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।